கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. आशीष का, डॉक्टर साहब का, सकेरे का, सैनिक का, सबका विचार था कि कुछ वेदों पर हम विचार व्यक्त करें, लेकिन आज सुबह मैंने कहा कि नवरात्रि के बाद इस पर तो करेंगे, क्योंकि आशीष ने कहा था तो हम आशीष आज इतना ही कहना चाहेंगे और आज जो अंतिम भजन प्रभु मेरे और चित्तमा धरो उस पर ही मैं, लेकिन आसिफ ने कहा था इसलिए इतना कह दूँ, ये अंग्रेजी के बड़े विद्वान हैं इसलिए अंग्रेजी में कह दूँ फिर बात में समझा दूँ। व्हाट इज द एंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अंत क्या है? हमारे ऋषियों ने जवाब दिया वो अंग्रेजी में कह रहा हूँ, द एंड ऑफ नॉलेज परफेक्शन, ज्ञान का अंतिम स्वरूप कौन सा है? देन व्हाट इज द एंड ऑफ परफेक्शन, दैट इज सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, जहाँ निष्काम भाव से सेवा होती है वो पूर्णता है, और यही हमारे ऋषि मुनियों ने वेद के माध्यम से बता दिया। व्हाट इज द एंड ऑफ नॉलेज, द एंड ऑफ नॉलेज इज परफेक्शन, देन व्हाट इज द एंड ऑफ परफेक्शन, द एंड ऑफ परफेक्शन इज सर्विस, है कि नहीं? जहाँ भी पर देखिए सूरज है पूर्ण है सेवा दे रहा है उसको कोई आशा आशा नहीं, बल्कि अगर आपको बताएं कुछ और न समझना, ये आशा आशा ऐसी बाहर ठगनी है कि राम का भी सत्यानाश कर दो, आसाराम का भी सत्यानाश है कि नहीं? ये बहुत ठग नहीं आता है कि नहीं? बस जब आप पूर्ण हो गए तो पूरा जगत आपको नमस्कार कर रहा है, पूरा है उसमें आशा रखने की कि हमें कोई नमस्कार करेगा तभी हम तो आज है। तो वेदों के माध्यम से आप सबको मैं सूरज तक पहुंचाऊंगा, हमारी सूर्य विद्या है, आप इतने अच्छे बन जाओ कि देना ही सीखो, दुनिया दे कि न दे उसकी हमें परवाह नहीं, अपने आप श्रद्धा से देंगे। अभी हमारे भूदेव आए गुजरात के मानव भजने के माने श्रद्धा से दिया है, कोई प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल होते ना तो कहते मारा ये घंटे का 25,000 लेता हूँ और मैं 25,000 कहाँ चलाता दारू वालों से, अब आपसे तो मिलते ही नहीं, आपके भजन तो उनका 40,000 कहाँ से निकालो, बच्चों को पढ़ाओगे क्या करो, क्या करो ऐसा है। तो इसलिए मैं आसिफ की इज्जत, डॉक्टर साहब पटेल की, सैनिक की, इन वजन सब की इज्जत करते हुए इतना ही कहूँगा कि मैं नवरात्रि के बाद इस पर विचार जो है करके, आज जो है बहुत अच्छा भजन अभी अंत में जो सुनाया है बहुत अच्छा, प्रभु मेरे अवगुण चित्तों का, इस पर वैज्ञानिक विवेचन करूँगा। यहाँ संस्कृत के जो विद्वान बैठे हुए हैं वे जानते हैं गुण का अर्थ होता है रस्सी, रस्सी का काम है बांधना। पहले एक मोटी परिभाषा कर दूं कि और बड़ी जबरदस्त बात मनोवैज्ञानिकों ने हमारे ऋषि मुनियों की रखी है, चाहे वो योगी रहा हो संयोगी रहा हो, लेकिन बड़ी जबरदस्त बात रखी है, मैं आपको बताऊं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय आत्मन। जब हम आपको गुण से बांधते हैं और परमात्मा कर ले जाते हैं तो सगुण हुआ, अच्छी रस्सी से अच्छे विचार से अच्छे सत्संग से आपको बांध करके जब चलाते हैं तो कौन उपासना हुई? सगुण उपासना। और मान लीजिए केवल माया का ही ध्यान रहे, और मोटी परिभाषा में कह दूं बड़े प्यार से, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले कहा चाहे वो किसी की भी बात हो सकती है कहीं कोई नहीं, मेरे प्रिय आत्मन वृत्ति में जब निवृत्ति आए, ये जा शब्दों पर जोर देना, वृत्ति में जब निवृत्ति आए तो उपासना निर्गुण बनेगी, और वृत्ति में जब कोई आशा आएगी तो उपासना सगुण बनेगी, और सगुण में जब वासना जागेगी तो भ्रष्टाचार फैलेगा। उपासना और उपासना का जो है अर्थ ही है। अब ये जो सत्संग है, ये जो पूजा है, पद्धति है, ये क्या है? सगुण उपासना, अच्छी बातों से आपको बांधना और बांध करके अच्छी जगह ले जाओ। एक विचार कीजिए, बड़े प्यार से कहता हूं, आप कोई पशु खरीदते हैं, रस्सी तो वही होती है, लेकिन अच्छा आदमी कहाँ ले जाएगा और कसाई कहाँ ले जाएगा? रस्सी तो वही है, गाय तो वही है, लेकिन फिर भी इसी तरह से अब वो अवगुण हो जाएगा। अवगुण मतलब बाधा गया है, लेकिन उसमें पतन। सगुण में अच्छी बातों से जो बांधे हैं, इसलिए सगुण की उपासना है। ये जो हम ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ते हैं, इनके परिवार पर जब ध्यान दोगे तो जबरदस्त एक विचार आपको आए। कहानी तो आप सब जानते हैं कि उनके पिता ऐसा, वो सब मुझे नहीं कहना है। संत ज्ञानेश्वर पर फिल्म भी बनी, देखे होंगे, लेकिन जो इस समय कहना चाहता हूँ आप सब, या देखिए निवृत्ति देव, सोपान देव, ज्ञान देव और मुक्ता, नाम जो रखे गए, ये कितने कुदरती थे, जो आज मनोवैज्ञानिक भी, साधना करने वाले भी कहते हैं कि बहुत ही इन नामों में एक रहस्य है, एक चमत्कार है, एक विचार। पहले तो यहां जो पढ़े लिखे लोगों को निवृत्ति का अर्थ क्या है? कर्म छोड़ना नहीं। हमारे शिक्षक या अधिकारीगण, डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर सो जो रिटायर होते हैं, वो टेक्निकल एक व्यवस्था है, लेकिन अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से कोई रिटायर कभी नहीं होता। अपने प्रकाश से, अपने बुद्धि से कोई रिटायर नहीं होता। वो एक व्यवस्था है, चलो हमने 35 साल नौकरी के रिटायर, लेकिन निवृत्ति का से क्या है? ये जो पहला नाम निवृत्ति देव आया, आखिर क्यों आया? सोपान देव, दूसरे भाग नाम सोपान था, तीसरे का ज्ञान था, मुक्त शक्ति देव। लेकिन मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार करें, नाम कैसे भी रखे गए, और नाम सही है, गलत नहीं है, कल्पना नहीं, लेकिन साधना की दृष्टि से देखें, निवृत्ति का अर्थ क्या है? घर छोड़ना, अपना काम छोड़ देना। निवृत्ति का अर्थ है कर्म करते हुए किसी तरह लालच में नहीं आना, कर्म को नहीं छोड़ना। कर्म इस बात जो लालच है, अच्छा आप बताइए आपको लालच क्यों आती है? ये मनोवैज्ञानिक बात है, लालच क्यों आती है आपको? क्रोध क्यों आता है? अहंकार क्यों आता है? ये सब क्यों आता है, कभी आपने विचार किया? तो ये थोड़ा सा विचार आपको करना है। हमें निवृत्ति का अर्थ है किस तरह से लेना है, हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह कहा है, वही विचार मैं अपने ढंग से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। घर छोड़ने से, कर्म छोड़ने से कुछ होने वाला नहीं। जो तैरना जानता है सभी जगह तैरेगा, नहीं जानता तो कहीं भी नहीं तैरेगा। तो निवृत्ति का जो पहले टेक्निकल है, आप 35 साल नौकरी किए, अर्थात सरकारी नियम में रहे, अबाइडिंग बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको एक नियम में, पद्धति में रहना पड़ा। रिटायरमेंट करके जो हमारा संस्कृत निवृत्ति है, निवृत्ति का अर्थ है कि आप अपने अच्छे नियम बना करके स्वयं को, परिवार को, समाज को ऊंचा उठाएंगे। ऐसा नहीं कि आप समाज और देश के भाग बने। पहले मुझे नियम का पालन करना पड़ता, मैं दो चार बातें ऐसे जानता हूँ जो इशारा करूंगा। अच्छे अच्छे पद पर लोग, एक डीएसपी को जानता हूँ, एक जज को जानता हूँ, कि कानून के प्रभाव से न्याय नहीं कर सके इसलिए छोड़ करके सन्यासी बन गए। वो चर्चा मैं कभी करूंगा। एक जज एक डीएसपी को मैं जानता हूँ, बात थोड़ी पुरानी है लेकिन इस समय नहीं कहा। लेकिन पूछने पर आप डीएसपी हो क्या होंगे, कहते मनीषानंद जी नियम के आधार पर मुझे सजा देनी थी, लेकिन मन कहता था कि जो नियम सत्य का न्याय नहीं कर सकता उसको उसी पर बैठने की क्या जरूरत। एक जज की बात है, एक देश की बात है। अब इसी तरह से निवृत्ति क्या हुआ कि हम किसी के बंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन अच्छे विचारों के बंधन से बिना किसी से प्रभावित होकर के हम स्वयं भी उठेंगे। अर्थात उसमें लालच नहीं, क्रोध नहीं, किसी की निंदा नहीं, कुछ नहीं। आपको क्रोध क्यों आता है? ये आपका हम है, लोग आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने क्रोध के विषय में बहुत एक सुंदर बात कह दी है, इसे मैं बहुत धीरे से और आपको कहूंगा। हमारे ऋषियों ने कहा क्रोध पहले आपकी शांति को खा जाता है। सुनना, क्रोध पहले आपकी शांति को खा जाता है और फिर आपके संबंध को खा जाता है। पहले शांति को क्रोध खाएगा, फिर आपके संबंध को खाएगा। और रुपया पैसा रहने से जो लोग आगे पीछे कुत्ते की तरह धाक लगा के बैठे हैं, उनका भाव जो है खत्म हो जाएगा। केवल वो कुत्ते की तरह बैठे हुए हैं बस, बाकी और कुछ भी नहीं कि कब मौका मिले और मैं इनका लाडू खाऊं। और जब पता चले वो लाडू नहीं तो उठके चला जाए, मतलब नहीं आपके पास, तो जा समझिए। मैं बच्चों से कहूंगा, अच्छे अच्छे बच्चे हैं सब आए, बच्चों से कहूंगा, जब आप फील्ड में बैटिंग करते हो तो आपके आगे पीछे 11 जो खड़े हैं प्यारे बच्चों, वो आपको आउट करने के लिए खड़े हैं, मदद करने के लिए नहीं खड़े हैं। एक ही आपके साथ दौड़ेगा, कब? जब आप इशारा करोगे तब। लेकिन जब आप आउट होगे तो आप जाओ खड़ा है, एक परमात्मा ही आपकी मदद करेगा, बाकी कोई आपको मदद करने वाला नहीं। ये आपको बता दो, जहां भी थोड़ी बात हुई बड़ा मुझसे सब आउट कर देंगे। एक समझने की बात है, जानने की बात है, और उसी परमात्मा स्वरूप फिर माता पिता गुरु को साकार रूप में माना गया। इसलिए कुछ भी हो जाए, दुख में आपत्ति विपत्ति में माता पिता गुरु ही मदद कर सकते हैं, बाकी सब छोड़कर सब ताली में जाने। तो निवृत्ति का क्या, पलायनवादी नहीं बनना, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपना नियम बना करके हमें क्रोध नहीं आए कि मैं ये था मैं वो था, वासना नहीं आए। देख लीजिए जितना पतन है, पहले तो आपकी शांति ही खा जाता, फिर आपका संबंध खा जाता है, फिर लोगों का भाव खा जाता है। आप कहें स्वामी भाव वाली बात, जब तक आपके पास लाड़ू है तब तक वो आपकी तरफ देखेंगे, और जब पता चल गया लाड़ू नहीं दिखाते तो नहीं उनसे। लेकिन जो आपका अपना होगा, चाहे कैसी परिस्थिति, जैसे हमारा अर्जुन लाड़ू के लिए नहीं बैठा, हमारी माँ सीता ठीक है जो कुछ था, लेकिन घनघोर परिस्थिति में भी, विकट से विकट परिस्थिति में भी, कुछ भी हुआ उन्होंने अपना दोष दिया, लेकिन किसी तरह कृष्ण पर राम पर आरोप नहीं लगाया और छोड़ने का विचार भी कभी मन में नहीं आया। कितने लोगों को मैंने देखा ऐसे। अब इसी को मैं एक जय कृष्णामूर्ति की भाषा में कह दूं, जय कृष्णामूर्ति बहुत जबरदस्त हुआ, जिन लोगों का परिचय रहा वो जानते हैं जय कृष्णामूर्ति क्या कहता। जब मुझसे मिले बातचीत चली और बड़े प्यार से कहते मनीषानंद, अगर बड़े प्यार से कह रहा हूँ तो आप लोग जरा थोड़ा कड़वा तो लगेगा लेकिन आप जरा समझेंगे। और बहुत ही समझने की बात है, जानने की बात है, इसलिए मैंने कहा बहुत धीरे से बोलो। मनीषानंद जब बड़े प्यार से कह रहा, इसे कुछ और न समझिएगा, धर्म में जब व्यापार आएगा, धर्म में जब व्यापार आएगा धर्म का सत्यानाश होगा। मनीषानंद व्यापार में धर्म जाएगा तो व्यापार शुद्ध होगा। तो जरा पढ़े लिखे हो भविष्य में ध्यान रखना कि आपके धर्म में प्रवचन में किसी तरह व्यापार। कई बार आपको इशारा किया, कितने लोग आए मुझे, मैं आप कितना लाख दूंगा, डीएसपी आपको जानता, कलेक्टर जानता है, क्या व्यापारी था तो पहुंचेगा, लेकिन मैं नहीं माना। अभी थोड़े दिन पहले भी किसी ने मुझे कुछ कहा, स्वामी जी मेरा काम करा दीजिए तो ऐसा करूंगा। मैंने कहा दूसरा आसाराम बाबू न तैयार करूंगा। कोई छोड़ने वाला मुझे भी नहीं, हंसने लगे। एक बात कर, कितने पहले मुझे कहा था कि धर्म में व्यापार और व्यापार में धर्म, आप धर्म में व्यापार हो गया, इसलिए धर्म का भी सत्यानाश। व्यापार और धर्म मतलब हम और आप, व्यापार नहीं कुछ है। जब कहा गया कि धर्म में व्यापार न आए तो धर्म के पोषक हम है, मतलब व्यक्ति में जो धर्म करने वाला है उसमें व्यापार की बुद्धि न आए। व्यापार करने वाला हम है, उसमें अगर धर्म आएगा तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। तो निवृत्ति नाम, निवृत्ति देव, बड़ी सुंदर बात है मेरे प्यारे। पहले निवृत्ति देव बने, हमें ना अच्छे से मतलब ना बुरे से मतलब, अपना काम करना, हमें किसी की लालच में नहीं आना, किसी की बातों में आकर के अपने धर्म का सत्यानाश नहीं करना, अपनी मर्यादा में रहना। फिर आपको एक सीढ़ी मिलेगी सोपान देव, निवृत्ति देव के बाद सोपान देव, एक सीढ़ी मिलेगी और वो सीढ़ी आपको ज्ञान तक, ज्ञान देव देखे, निवृत्ति देव, सोपान देव, ज्ञान देव, और फिर भगवान का नाम है मुक्ता। निवृत्ति से, निवृत्ति मतलब छोड़ना नहीं, ये सबसे निवृत्ति लेना। संन्यास मतलब घर छोड़ना नहीं है, एक क्रोध को छोड़ना है, लोभ को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ना है, वासना छोड़ना है, घर छोड़ने का नाम नहीं है। नहीं चलिए दो महीने के लिए घर छोड़ के आ जाइए, सन्यासी बना के वापस कर दूं, नहीं छोड़ना कुछ नहीं है, समझना। गरुआ घर बस पहने, पीला बस पहनने से कुछ नहीं होगा, जो सत्य है वो कह रहा। तो ऐसी निवृत्ति कि आप तटस्थ हो जाओ, आप सहज हो जाओ, आप अच्छाई बुराई दोनों से उपराम हो जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, योग वशिष्ठ परिय रामायण। ज्ञान होने पर राम भी उपराम हो गए। अब गुरुदेव से कहा कि मुझे राज नहीं करना, कहा क्योंकि जगत मुझे मिथ्या लगा, ये मिथ्या पर क्या राज कर। नहीं, कितनी सुंदर बात ये व्यवहारिक व्यवस्था के, राम जगत में मिथ्या लग रहा है कहे हम, कहा तुम गद्दी पर बैठो, जब जगत मिथ्या है तो अपना धर्म निभाते समय न तुम में वासना आएगी, न लालच आएगी और न क्रोध आएगी, क्योंकि जब जगत को मिथ्या समझ लिया तो किस पर लड़ोगे, अपना काम करो, काम सब कुछ करो, लेकिन बदले की भावना नहीं है। हाँ जहां जरूरत है सब कुछ करो, लेकिन जानबूझ करके दूसरे को फंसाओगे नहीं, पैसे की लालच में दूसरे को गिराओ के नहीं, जब पढ़ो तो समझो तो सही है कि नहीं, एक विचार के बाद। तो जब ऐसी आपकी अवस्था हो जाएगी, राज जनक की अवस्था देखो, राम की अवस्था देखो, किसने नहीं काम किया, जा विचार कर किसके विषय में बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन जबरदस्त बात है कि सब कुछ करते हुए वो असंग रहा, अनासंग रहा, नाचा कूदा भाषण खाया सब कुछ किया, कितना असंग था। और मैं भी यही कहता, बढ़िया रोटी खाओ, बढ़िया कपड़ा पहनो, बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छे पद पे जाओ, लेकिन जो सही है उसको समझो, उसकी मदद करो अपने सुख के लिए, कंस की तरह रावण की तरह दूसरों को दुखी करने की जरूरत नहीं। कर्म तो किया, कर्म तो किसने भी किया, कंस ने भी किया, लेकिन किसने हक के लिए किया, साथी को मने, अपने लिए नहीं। लोग न्याय नहीं कर रहे, और फिर अर्जुन के साथी बने न्याय दिलाने के लिए, तो मैं आपसे कहूं न्याय दिलाने के साथी बनो, लेकिन द्रोणाचार्य भीष्म पितामह होकर दुर्योधन की मदद न करो, जो गलत चल रहे उनकी मदद न करो, भाई तुम्हारा भी हमारा भी सब कर सकते, कोई भी आ सकता, उसमें कपड़े की बात नहीं। फिर एक सीढ़ी मिलेगी सोपान, फिर उसे ज्ञान मिलेगा, और एक ज्ञान आपको मुक्ता मतलब चौथा नाम जो मुक्ति मुक्ति मिला देगा, और जीवन मुक्त होते ही फिर ईश्वर देखता सब। अब कहेंगे स्वामी जी आप तो बोल रहे थे प्रभु मेरे अवगुण चेतना दो, और आप उस पर बोल रहे थे, अब यही इसी पर आ रहा। ये सूरदास जग बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इसके पीछे जो कहानी है सुना सुना दूं फिर मैं बताऊं। तानसेन के गुरुदेव संत हरिदास वृंदावन में रहते थे। अकबर ने कहा मैं तुम्हारे गुरु का दर्शन करना चाहता हूं, एक दिन चले आप, वो बुलाने पर नहीं आते, हमें चलना पड़ेगा, दर्शन करना पड़ेगा। तानसेन की बात मान करके अकबर वृंदावन गए। उस समय संत हरिदास प्रभु बोले अवगुण चित्म धर्म, करीब करीब 2-2.5 घंटे हो गए अपनी मस्ती में थे। अकबर ने कहा कि हमें वापस दिल्ली भी जाना है, समय लगेगा, रात चार संभालना, फिर कभी आ जाएंगे, लेकिन एक कब उठेगा। तानसेन कहते मेरे गुरु इनको मैं कुछ बोल नहीं सकता, इनको मैं कुछ नहीं बोल, लेकिन ये 2 दिन भी हो सकता, 3 भी हो, आधे घंटे, मैं नहीं कह सकता कि अकबर आया है और आप उनसे बात करें। एक गुरु इनकी मस्ती है, अपने आप कहेंगे, अपने आप बुलाएंगे तो होगा। अकबर वापस आ गया, बड़ा प्रसन्न था दर्शन करके सुन करके। दूसरे दिन दरबार में उसने बड़े प्यार से तानसेन से कहा आपके गुरुदेव ने जो भजन सुनाया था उसी ताल स्वर से आज मैं सुनना चाहता हूँ, प्रभु मेरे अवगुण चित्तन। सारे दरबारी सारे मंत्री वाह वाह बोलने लगे। पहले वाह वाह बोलने पर कहानी कहती है बीरबल अकबर एक सर्फी बीरबल को देते थे, कहा तानसेन को दे दो। आज इतना वाह वाह होते हुए भी बीरबल को बुलाया भी नहीं और कहा भी नहीं कि सर्फी दे दो, एक सोने के सर्फी दे दो। खैर सभा पूरी हुई, सब कुछ हुआ, तो बीरबल ने पूछा कहानी जो है आज सारे दरबारी सारे मंत्री लोग इतना वाह वाह किए कि कमाल है तानसेन कमाल था, लेकिन आपने कुछ इनाम के तौर पर मुझे बुलाया भी नहीं और तानसेन को दिया भी नहीं। कहते भजन मैं पहले भी सुन चुका हूं तानसेन के गुरुदेव से, तो तानसेन को बुला दी। क्या भाई है? बादशाह कहते हैं कि आपने बहुत ही सुंदर राग रागनी से पेश किया, लेकिन ये भजन अकबर सुन चुके हैं, मुझे तो मालूम नहीं कब सुने कहाँ सुने, खैर सब कहानी कही गई। तो हाथ जोड़ करके बीरबल पूछते हैं प्रभु कारण क्या, आप पहले सुने थे, आप अपने प्रति न्याय करते ईमानदार हैं सच्चे हैं, कि सारे दरबारी प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो आनंद विभोर हो गए और आप नहीं हुए। कहा मैं समझ नहीं पा रहा, इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं अपने ईमानदार। फिर बीरबल बड़े ही चतुर थे, विवेकी थे, समझदार थे। उन्होंने तानसेन से पूछा, तानसेन ने कहा मुझे अभयदान मिले, मतलब सच्चाई कहने के बाद राजा कोई दंड न दे, अभयदान। अकबर कहता अभयदान, सच्चाई व्यक्त हो। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु कृष्ण को रिझा रहे थे और मैं अकबर आपको रिझा रहा था, इसी भाव के अंतर के कारण जो आनंद गुरु के मुख से आया वो हमारे मुख से भाव के बाद विचार के एक भाव के बाद। जब हम पूर्ण समर्पित होते हैं, भजन में कितना सुंदर सब गाया है, जब आप पूर्ण समर्पित होते हैं तो वही बात जो मैं निवृत्ति नाथ सोपान देव ज्ञानदेव से बताया, निवृत्ति की बात की, तो जहां विचार कीजिए, आप वैज्ञानिक भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, जहां पूर्ण समर्पण है वहां अस्तित्व आपका खत्म हो जाता है, विज्ञान भी है। पहले विज्ञान को दाम दे दूं, आप पढ़े लिखे हैं, यहां पानी का जब विश्लेषण कीजिए तो एक मोटी भाषा में दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन, दो भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन मिला के पानी बनता है। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, आपका विज्ञान भी कहता है पानी में ना हाइड्रोजन का गुण है ना ऑक्सीजन, अलग अलग करने से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, टोटल समर्पण हुआ। अब ये जो भजन कर रहा है प्रभु मेरे अवगुण चेतना था, ये बड़ी ऊंची बात है। हमारे प्रभु पवित्र हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, भजन में कहा होगा नाला, लेकिन गंगा से मिला तो गंगा जल हो गया, कहां उसका अस्तित्व रहा। तो जब आप परमात्मा में अपने आप को पूर्ण समर्पित करोगे, तो मैं एक अमेरिका की बात बता दूं, हमारे साथ नरेंद्र भाई गए थे, आते हैं अभी थोड़े दिन पहले आए थे, गए थे, तो वहां पर एक प्रश्न था, तो ये पब्लिक का प्रश्न नहीं था, मेरे सामने प्रश्न था, तो उसका जो जवाब दिया था वो आपको, वहां नहीं कुछ कहा था, यहां मैं आपको जवाब दे, मैंने विदेश में देखा उनका उठना बैठना चलना बोलना बालना सोना, और उसको तकलीफ नहीं होती, 9 बजे के बाद लाइट नहीं जलाते, सैटरडे दिन केवल 12 बजे तक, बाकी आगे पीछे 9 बजे लाइट बंद कर देते, किसी घर के सामने हार नहीं बजता, मतलब एक व्यवस्था देखिए कितने सुंदर पर पूछे। अब अपनी व्यवस्था क्या बताऊं, आप जानते मुझे कहने की क्या जरूरत। तो जब वहां पर प्रश्न हुआ था कि स्वामी जी आप तो हिंदुस्तान के हैं ही, अमेरिका देखा क्या है, तो हमने बहुत कुछ कहा था और एक बात कही थी, हमने अपनी भी तारीफ की थी, उनकी भी तारीफ की थी, कुछ विवेचन किया था कुछ, लेकिन एक जो बात इस समय बताना चाहता हूँ फिर कभी कह देंगे, जो बहुत कुछ है। कि यहाँ के लोग सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक बहुत अच्छे रहते, मंडे टू फ्राइडे क्लबों में जाकर, सड़क पे नहीं, क्लबों में जाकर शनिवार के रात जो कुछ करना है करते हैं। तो ये लोग दिन में ठीक रहते हैं, रात में ठीक रहते हैं, केवल शनिवार का दिन और रात और संडे का सूरज डूबने तक ये क्लबों में रहते हैं, खेलते हैं, शराब पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये हफ्ते में मैंने हिसाब जो ऐसे पूछा तो बैठे, पब्लिक की बात नहीं है, इसको गोष्ठी कह सकते हो, जैसे आप कुछ पूछते हैं कभी कमरे में। तो मैंने अपनी तरफ से कहा, मैं इतना कहूंगा एक बड़े पैमाने पर कि ये लोग दो दिन गड़बड़ रहते हैं, शनिवार और इतवार, बाकी पांच दिन ठीक रहते हैं। और मैंने भारत को देखा कि जब तक ये मंदिर में रहते आधे घंटे तभी तक ठीक रहते, बाकी पता ही नहीं चलता कौन से दिन कौन से रात ठीक रहते हैं। न दिन का पता चलता है न रात का पता। एक बात, जब आप पूर्ण समर्पित हो गए, ये जो भजन छबीलदास के इशारे पर हमारे भूदेव ने प्रकट किया, कितने भाव से किया, आंखों में नहीं आ गया, पानी आ गया। हम सब प्रभु के संतान, हम उसके हंस हैं, ये अवगुण आया क्यों? वो तो हमारे माता पिता है। एक मोटी सी बात, स्वामी जी क्या आप भगवान से, कभी 20-22 साल पहले मुझसे पूछा गया एक युवक ने, क्या स्वामी जी आप भगवान से डरते हो? मैंने कहा भगवान मेरा माता पिता है, मैं नहीं डरता। हाँ, जब गलत काम करूंगा तो माता पिता से डरना, लेकिन जब माता पिता को बताऊंगा डरूंगा, लेकिन बताऊंगा तभी उसका रास्ता निकालेंगे, क्योंकि कोई भी गलत काम करूंगा तो माँ बाप से डरूंगा, रास्ता माँ बाप ही निकालेंगे। इसलिए सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है, हम आप जन्म से अवगुण लेकर नहीं आए हैं, ये कुछ संपर्क के कारण, कुछ संपर्क कारण हो गया, लेकिन उसे दूर करेंगे माता पिता गुरु, और विशेष रूप से गुरु दूर करता है। इसलिए जहाँ पूर्ण समर्पण है वहाँ आप बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे, इसलिए ज्ञान में और मुक्ति में कहीं कोई बाधा मिलने वाली रहने वाली नहीं। लेकिन यही मैं अक्सर अपनी कई बार प्रवचन में कहा है, अगर आपको क्रोध आता है तो कान गुरु को दे दो, गुरु संभाल लेगा। आप मान लो कान मेरे गुरु का, आंख मेरे गुरु का, लेकिन आप अपनी जगह ठीक रहिए, थोड़ी थोड़ी बातों हमारे जीवन का कितना सत्यानाश हो रहा, हमारे पहले भी हुआ और आज भी हो रहा है, और इस मर्यादा के बाद जो जाएगा होता रहेगा, चाहे कितने सिद्ध हो जाओ, चाहे करोड़पति बन जाओ कि राष्ट्रपति बन जाओ कि कुछ हो जाओ कि कितने बड़े बन जाओ, लेकिन कर्म जो गलत है वो गलत है। अब मंदिर में बैठकर या गुरु के पास सामने बैठ के आपने कह दिया प्रभु मेरे अवगुण कितना डरो, तो एक बड़े प्यार से बात कहूँ, प्यार से बात कहूँ, कहूँ कि नहीं कहूँ? आप जो है बहुत, हम लोग हर साल के जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, हर पूनम पर, हर रविवार को आप लोग यहाँ आते हैं, तो हर रविवार के बाद दूसरे रविवार और आगे जाना चाहिए। कई बार तो लगता है पिछले रविवार ज्यादा ठीक थे, इस रविवार ज्यादा गड़बड़ हो गए, किधर चले गए? पिछले साल की पूनम पर, गुरु पूनम पर आए तो बहुत अच्छे थे, इस साल की पूनम पर आए तो ऊपर कहता पटेल साहब के बहुत अच्छा लगते, लिस्ट बताने की लड़की भाग गई, लड़का कहना नहीं मानता, पैसा नहीं भेजता, क्या है? एक बात कर, आप अपने धर्म को करें ये तो होता रहेगा, पहले आपने क्या गलत किया? तो जब आप साकार पूजा में प्रभु का स्वरूप राम भी है, कृष्ण भी है, माता है, पिता है, गुरु है, जो जिसे पेड़ भी मानते हो पेड़ भी है, सब में वही नदी में है, उसमें कहीं कोई अंतर लाने की कोई जरूरत नहीं, जिसे भी मानते उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ। पूर्ण समर्पण अर्जुन का, देखिए अर्जुन के मन में बड़े तर्क आए, तर्क चलता रहा चलता रहा, और गीता का अंतिम देखिए, अगर आपको सुनाए मनोवैज्ञानिकों की बात, वेदों में से उपनिषद आए, उपनिषदों के आधार पर 18 पुराणों की रचना हुई और सबको मिला करके 700 मंत्रों में श्लोकों में गीता है। ये मनोवैज्ञानिक विचार। हमारे कृष्ण ने किस तरह अर्जुन को उठाया, अर्जुन नाम हमारा है, हमारे आप में विमोह पैदा होता है, हमारे आप में डिप्रेशन आता है, विषाद आता है, काम करूं कि ना करूं, लेकिन किस तरह से उठाया। और देखो अंत में भी, अब तू बता तेरा निर्णय क्या, कहा मैं नहीं ले सकता, नहीं तो तेरी श्रद्धा जिसमें है टोटल, श्रद्धा का मतलब टोटल विश्वास, टोटल फेम, ऐसा नहीं कि 15 दिन गुरु रहना 15 दिन चेला रहना, ऐसा नहीं। गुरु ने कहा बेटा पानी बरस रहा देखो बंद हुआ, अरे कहा अभी कुत्ता आया नहीं बरस रहा, देखो कोई आया, अरे जो होगा आ जाएगा, बेटा भोजन समय हुआ कहा वो तो देखना ही पड़ेगा, तीसरी बात तो माननी ही पड़ेगी, भोजन के लिए सब तैयार। एक बात तेरी जिसमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास हो उसे तू सलाह ले, कहा मुझे आप में एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बात है। आप बार बार कहते हो श्रद्धा श्रद्धा, चिंता क्यों करें, चलो मैं अपनी बात, गुरु महाराज आप में बहुत श्रद्धा है तो जो मैं कहता हूं मानते क्यों नहीं, फिर काय को तकलीफ उठाते, काय की श्रद्धा, ये कितनी जबरदस्त बात है। और श्रद्धा मेरे में अभिप्राय दूसरे का, जैसे मैं बताऊं व्यवहारिक बात, अर्जुन नहीं पूछने के लिए गया किसी, ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है। मैं डॉक्टर सैनी में श्रद्धा रखता हूं, इन्होंने कहा दवा दी और मैं पहुंच गया किसी और डॉक्टर के पास, बताइए तो डॉक्टर सैनी को मैं 25 साल से जानता हूं, श्रद्धा है, वो डॉक्टर अच्छा है लेकिन नाम है कि 2 साल, अगर इनकी दवा लेकर दिखाने उसको गया तो मुझे उसको दिखाना था, सैनी के पास जाने की क्या जरूरत, आप मेरे पास आते हैं स्वामी जी आप में श्रद्धा है, मैं बताऊं यहाँ तक बताऊं आपको, आप सबके नहीं लेकिन 10% देखा है, लोग मुझसे आगे कहते हैं महाराज जी एक महात्मा आए उन्होंने कहा अपना गुरु मंत्र बताओ, मैं बताया तो कहते छोटा गुरु मंत्र है, मैंने कहा कि इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपना गुरु मंत्र किसी को बताना, वो कहता है छोटा गुरु मंत्र है तो असर कम करेगा बड़ा ले ले। अब बताइए, अब मैंने कहा हीरे की अंगूठी कीमत कितनी है, लोहे की अंगूठी कितनी है, वो लोहा था उसकी बुद्धि बदलनी थी मेरी, तो तेरा गुरु जो है हीरे की तरह हीरे का मंत्र देता है उसको आय कह देना लोहे का मंत्र कह दे ठीक है। अब यही देखिए मेरे पास आके कर काहे की श्रद्धा मेरे, एक बात कर, इसलिए सबसे बड़ी बात गीता ज्ञान रख रहा, मैं नहीं कहता मेरे में श्रद्धा रखो, जब तक नहीं श्रद्धा हो तो देख लो मैं बता दूंगा, विवेकानंद की बात बता दो, विवेकानंद ने रामकृष्ण के बहुत परीक्षा ली है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, और जब श्रद्धा हुई कभी नहीं टूटी। मैं अपनी ही बात करता हूं, कभी मत कहो मनीषानंद आप में श्रद्धा है, कहा तो ठीक आप अच्छे लगते, जितनी परीक्षाएं लेनी हो ले लो और परीक्षा में मैं सफल हो जाऊं और एक दिन मन कहे कि श्रद्धा रखना है तो उसके बाद न अपनी मन की बात सुनो न किसी की, अपने मन की भी नहीं, क्योंकि मन भी तो 420 है ना, बहुत 420, बताऊं कैसे 420 है, बताऊंगे नहीं मन इतना 420 है कि बस जाने दीजिए। मैं दुकान पर गया, मैंने कहा क्या बात है, कहा 5 रुपया किलो, सामने वाले का था 4 रुपया किलो, तो गया खरीदने के बाद चला गया वहां हिसाब लगाने लगा, नहीं एक बार जब श्रद्धा हो जाए तो हमारे जहां श्रद्धा है वहां नुकसान भी होगा लेकिन बहुत फायदा होगा, और बदलते रहोगे तो जो कुछ है वो भी वो चला जाए, स्थिरता नहीं चाहिए। मैं तो कहता खूब परीक्षा ले किसी की भी, आप बाजार में मटका लेने जाते हो 20 दुकान पर खूब दिखा लो और मटका खरीदा और रास्ते में किसी ने कहा क्या लाए, फिर वापस लेने आए तो खरीदने के पहले उसको बुला के दिखाना था, 2 किलोमीटर चले गए फिर वापस आए कितना खाओगे, किसी ने कहा दिया ये तो ऐसा है, आपके आपका ज्ञान क्या, आपके श्रद्धा क्या। इसलिए प्रभु मेरे अवगुण चित्त करो, हम सब परमात्मा के संतान हो, मेरे माता पिता। लेकिन जगत के संपर्क में आके हम थोड़े अवगुणी हो गए। अवगुण का मतलब कुछ और नहीं, क्रोध आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, अहंकार आ जाता है। तो ये जब उसमें समर्पित होंगे, आप चलो आप राम को मानते हो या विचार तो करो, हाथ जोड़ के कहता गलत ना समझना, आप राम को मानते हो या मैं प्यार से कह रहा, कैकेयी ने कुछ कहा मान गए या विचार तो करो, एक सुंदर बात कह रहा हूं, आप राम को मानते हो, कैकेयी का भी विरोध नहीं किया, यहां तो हमारी सगी माँ अच्छा बोलती है तो भी विरोध कर रहे हैं, आप राम को क्या मानते हैं। उन्होंने तो कहा कैकेयी जो करे मेरे लिए ठीक है, यहां हम सगी माँ की बात को भी ठीक मानने के लिए तैयार, जा विचार तो करो। भरत कैसे भी करके जैसे भी था खड़ाऊ लाया, आज का कोई खड़ाऊ लाता तो दूसरे दिन फेंक देता और राम को कहता वापस ही नहीं आना, ऐसे चौदों से चोट उसको वापस आने की, या सोचो तो मानते राम को और सगे भाइयों से 100 रुपए के लड़ते और कहते मैं तो राम को मानता, या विचार कीजिए क्या मानते। सिर्फ आप जानते हैं, मानते उनसे कुछ नहीं, सिर्फ जानते हैं मानते कुछ नहीं, 100 रुपए के लिए लड़ते थोड़े से हिस्से के लिए, अरे तुम्हारे भाग में मिले हो तो अवगुण की बात है क्या, या विचार करो किसी से राज द्वेष करना क्या, इससे इससे बहुत खतरनाक होगा, वो आपका भी सत्यानाश कर रहा हो भी कर रहा, आप किसी काल देखते हैं अपने कर्म की बात नहीं कर, किसी का अच्छा कपड़ा देखते हो अपने कर्म की बात नहीं कर। तो यहां पर आज जो मेरे प्रिय मेरे खास पत्र छविल दास ने जो कहा हमारे गुरुदेव से कि ब्रह्म मेरे अवगुण चित्त उसका यही है मेरे। अगर आप, मैं मनीषा मन के बात नहीं कर रहा, जहां भी आपकी श्रद्धा है वहां अपने को टोटल सरेंडर, टोटल सरेंडर करके अपने कर्तव्य का पालन करो। आएगी एक एक प्रतिकूलता, विरोध भी होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन जिस शक्ति के प्रति आप टोटल अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं वो आपकी मदद में है, वो आपका साथी है, वो आपके साथ है और आसान निकलेगा। लेकिन शंका करो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज मैं जैसे कहा नवरात्रि के बाद जो कुछ आसिफ ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, मैं शुरू करूंगा और समझाऊंगा, लेकिन आज देखा जाए तो आप लोगों से पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे प्यारे छबील दास ने बहुत जोर से कहा कि भजन सुनाओ, किसी भजन के आधार पर जो विचार आया होगा, हम सब प्रभु के संतान हैं और इस जगत के संपर्क में स्पर्श से थोड़ा सा अवगुण आ जाता, अवगुण यही है आसक्ति का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, दूसरे का गिराने का, दूसरे का सुख नहीं दे सकता। अगर आपकी श्रद्धा मेरे में है तो कुछ भी कोई कहे, तो जब आप मेरे हैं बुरा मत, आप मेरे हैं तो कोई कुछ आपको कहे वो मेरे पास आएगा और मैं उसे जला दूंगा, वापस आपको देने वाला नहीं। लेकिन मुझे दो तो सही तो यहां से जाओगे, गुरु महाराज जी बुरा नहीं मानिए, हमने मंदिरों में देखा, अगर मैं डीएसपी हो गया तो बदला लूंगा और डीएसपी बनते ही अरे बदला भगवान लेंगे, कर्म लेगा, तुम कितने लोग सुना कि मेरे को जरा डीएसपी बनने दो फिर बता, आज तक नहीं बने। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी ने गाली भी दिया हो और हे भगवान डीएसपी बनाओ तो पहले उसी की पूजा करो, क्योंकि गाली देने वाले से प्रेरणा हुई कि मुझे कुछ बनना है ना, हमें उसने हमें जागृत किया ना। टैगोर ने बहुत सुंदर कहा है, चलते समय जिस धूल में ठोकर मारोगे वो धूल तुम्हारी ठोकर से तुम्हारे मस्तक पे आ जाएगी, इसलिए तुम ठोकर खाकर मस्तक पे बैठो, किसी को ठोकर मार करके अपने मस्तक पे ना बैठा, किसी को ठोकर मार करके अपने मस्तक पे, लेकिन तुम्हें कोई ठोकर मारे तो उसके मस्तक पे, इसलिए ठोकर का स्वागत, तभी आगे बढ़े। तो भाई जब कोई ठोकर मारे तो दोनों गुरु को मार रहा, गुरु संभाल लेगा, मस्तक पे बैठा देगा, गिराएगा नहीं। तुम्हें कोई गाली दे तो गुरु को देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम छोड़ दिया, कह दिया गुरु महाराज आप कर लेना, रोटी आप बना देना, पति से रूठ गए तो रोटी आप बना देना, चाय आप बना देना, ऑफिस में रूठ गए तो काम आप करना, इसे पलायनवादी। नहीं तो अर्जुन भी कह सकता था कि आप कर दीजिए, मैं आपका पैर सुबह सामने, तो ये जान समझिएगा। तो प्रभु मेरे अवगुण कितना धरो के आधार पर जो विचार दिया, जो मेरे संपर्क में है, और अगर अभी मेरे लिए थोड़ा सा सलाह है, भाव है, तो भाई श्रद्धा की बात न करना, खूब परीक्षा ले लो, हर तरह से ले लो, लेकिन एक बार मन कह दे कि मनीषा नाम में श्रद्धा है, तो अपने मन की और किसी के अभिप्राय से भटकने की जरूरत नहीं। मूल के प्रभु मेरे अवगुण चेतना धरो। जय हो भूदेव की, जय हो हमारे छबीलदास की, और जय हो आप सबकी, के प्रेम से सुनो हरि ओम। चलो ले।